ट्रेन में या बस स्टॉप के ऊपर इतने छोटे से पैम्पलेट्स लगे होते हैं, महीने में 30,000 रुपए कमाइए, बिना मेहनत किए, बिना कुछ बेचे, बिना घर से बाहर निकलकर। तो हमने कहा क्या कोई हर महीना चेक भेजता रहेगा क्या, 30,000 रुपए का चेक? आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कौन है कल्याणकारी जो हमारे लिए इतने पैसे हर हमेशा भेजता रहेगा? बल्कि उल्टा विपरीत ये सोचना चाहिए कि जितनी कोई स्कीम, कोई योजना असंभव जैसी दिखती हो, उतना उसमें फंसाने वाले ने बहुत दिमाग लगाकर बनाया हो, इतना समझना चाहिए, है कि नहीं? तो इसी और ये मुद्दा जो है, ये पॉइंट कोई साधारण पॉइंट नहीं है। जगाई मदाई के उद्धार के बाद जब यमराज जी को पता चला कि ये जो जगाई मदाई हैं, उनको आज नित्यानंद प्रभु ने पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया, तो एक तो यमराज जी का विश्वास नहीं हो गया, बोला ये तो बिल्कुल असंभव बात है। यमराज जी के जो क्लर्क लोग थे, उनका जो ऑफिस था, यमराज जी का भी बड़ा कार्यालय है, इतने सारे पापी लोगों का रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है, तो उनके क्लर्क बता रहे थे कि ये जगाई मदाई के पापों का नोटिंग डाउन करते करते हमारे हाथ थक गए और कई कमरे के कमरे भरते गए उनके फाइल से कि इन्होंने आज ये किया तो और 10 फाइल पैदा हो गई। पांचवें स्कंद के 26वें अध्याय में ये बात आती है कि ये यमराज जी का नरक लोक और सब कहां है। उनका ऑफिस केवल उनका कार्यालय ही बताते हैं कि ये पृथ्वी ग्रह से भी बड़ा है, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है उससे बड़ा तो उनका ऑफिस है केवल। और उन सब की ये धारणा थी कि ये लोग तो इनके लिए खास एक नरक बनाना पड़ेगा, इतने ये पाप कर रहे हैं नए नए। और ऐसे पापी लोगों को नित्यानंद प्रभु ने केवल याचना करके उनके पाप नष्ट कर दिए। जगाई मदाई के उद्धार के बाद कथा ऐसी है कि जगाई मदाई दोनों ने भगवान की शरण ली, महाप्रभु ने कहा ठीक है आज से आप पाप मत करना, तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी तक हमने जो किए हैं उनका क्या? तो महाप्रभु ने केवल हाथ ऊपर करके उनकी कहा कि जोर से कीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा एकदम उत्स्फूर्त कीर्तन होने लगा। और देखा कि धीरे धीरे महाप्रभु का शरीर कृष्ण वर्णीय होते जा रहा है, काला होते जा रहा है, महाप्रभु उन सबके पाप अपने ऊपर ले रहे हैं। और एक समय ऐसा गया जो तो पूरे काले काले दिख रहे थे महाप्रभु। तो सबने देखा कि ये आश्चर्य देख रहे हैं हम, तो उन्होंने और कीर्तन किया और फिर पुनर्वो गौरवर्ण हो गए, गौरांग गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। तब किसी ने पूछा ये सब पाप गए कहां पे? अगर आपने इन सबके पाप लिए तो वो हमने देखा आपके शरीर पर सब पाप दिखाई दिए, और अब ये पाप नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि वो ऐसी एक अवस्था में है कि जो कोई वैष्णव या गुरु अपराध करेगा उसके हृदय का आश्रय लेंगे वो, तो इसलिए आपको इन अपराधों से बचना चाहिए, नहीं तो जगाई मदाई जिसके किए हुए पाप हैं वो पुनर हमारे हृदय में आश्रय ले सकते हैं। लेकिन इंद्र शिव नारद यमराज इन सब ये सब महाजन हैं, सब बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, और उन्होंने जब देखा कि ये क्या अनुपम तरीका है पापियों का उद्धार करने का, कि केवल उनको कृष्ण नाम कीर्तन में रद किया जाए और उसके सारे पाप निकल जाते हैं, तो वो कहने लगे ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र के खिलाफ है। शास्त्र में लिखा है कि बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है पाप से बचने के लिए, तो ये क्या है इसका मतलब? हम हमारे आचार्यों का जो मूड देखते हैं, उनका भाव मन का, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, कि महाप्रभु आप मुझ पर दया करो, क्यों? मोसामा पतित प्रभु ना पाई बे यार, आपने अवतार लिया है हरिनाम वितरण करने के लिए, तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है कि मेरे से और अधिक कोई पापी नहीं है, लेकिन इनका हम जीवन देखते तो क्या उनका जीवन पापी था? बिल्कुल नहीं। तो आचार्य एक ऐसा मूड, एक ऐसा भाव धारण करके हमको यह सिखा रहे हैं कि हमारे मन की धारणा कैसी होनी चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि कम से कम ये चार मुख्य पाप मत करो, मांसाहार, व्यभिचार, नशा और जुआ, कम से कम कह रहे कि इसके बाद तो मनुष्य जीवन आरंभ होता है। और जब प्रभुपाद प्रचार करने हेतु बाहर गए विदेश में, तो ये तो पापे पापों को तो रच रच के किया जा रहा था, ऐसे नहीं कि गलती से कभी होता है। और अब भारत भूमि में भी वही सब आ रहा है। हम सब अपना जीवन देखते हैं, हमारा अतीत भक्ति में आने से पहले, अगर हम में से इनमें से कुछ गलतियां हुई होगी तो क्या वास्तविक हम चाहते थे कि इसमें कोई बहुत रस है इसलिए तो करना चाहिए? केवल ब्रेन वॉशिंग, केवल एक मनोभाव, मन की धारणा। तो इसलिए लास्ट टाइम एक मुद्दा उपस्थित किया गया था कि संकट का अर्थ क्या है? संकट का अर्थ कोई वास्तविक, कोई भौतिक घटना नहीं है, हमारे अपनी मन की धारणा कि ऐसे हो गया तो अच्छा है, ऐसे हो गया तो बुरा है। इसलिए मन की शुद्धि करना ये वास्तविक फर्स्ट स्टेप है। हाउ टू फेस कैलामिटीज, जीवन में संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहला मुद्दा है कि अपनी मन को, धारणा को संभालना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह संभव नहीं है कलयुग में। कलयुग में लोगों के बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है कि समझ सके। भागवत में तो कहा गया है कि कलयुग की जनता तो ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, सदा उद्विग्न, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहेगी जिससे कि उनका मन सदैव विचलित रहेगा। इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो उनकी जो पद्धति है, उनका जो मार्ग है, उसे बताते हैं केवल आनंद कंद। सच में देखा जाए तो हमारी फिलोसफी है क्या? प्रभुपाद ने एक बार बताया था, चैंट हरे कृष्णा, डांस इन कीर्तन, टेक सम प्रसाद, एंड देयर इज लिटिल फिलोसॉफी। थोड़ी सी फिलोसॉफी है कि ये चैंटिंग क्यों करना चाहिए, ये डांसिंग क्यों करना चाहिए। हालांकि कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमको ये डांसिंग अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मन की अपनी धारणा होती है कि डांसिंग की क्या जरूरत है। या अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हमारे मन में केवल ऐसे आंखें बंद किए हुए योगी, एकदम क्रुश शरीर, बड़ी जटाएं, यही सामने आता है। लेकिन समाधि की अवस्था, समाधि का समाधि की व्याख्या है, अपनी बुद्धि पूर्ण रूप से किसी एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। तो प्रभुपाद जी बता दें कि जो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रास्ते में जाकर किताब दे रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा ये समाधि है। तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता था। तो इसलिए अगर ये इतना सुंदर तरीका है, ये इतना आसान है, और गीता के अनुसार सुसुखम, तो फिर इसमें ज्यादा लोग क्यों नहीं लगते? अगर ये जैसे हमने आरंभ किया था ये डिस्कशन कि घर बैठे 30,000 रुपए कमाइए, हम कहते कि नहीं, ये तो कुछ फंसाने का धंधा है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि जो तपस्या पहले लोग लाखों साल करते थे, उसी तपस्या का लाभ, उसी तपस्या का फल आज आपको केवल हरे कृष्ण जप करने से मिलेगा। और भारत में आज कई ऐसे प्रसिद्ध साधु पुरुष, संत पुरुष हैं जिनका इस बात पर विश्वास नहीं है कि हरे कृष्ण करने से क्या होगा। एक बार एक पंडाल प्रोग्राम में श्री प्रभुपाद जी ने कुछ टाइम दिया था, तो 15-20 मिनट तक उन्होंने कुछ छोटा सा लेक्चर दिया, फिर किसी ने प्रश्न पूछे तो उनका भी उत्तर दिया। तो एक निर्विशेषवादी मायावादी ऐसे गुरु महामंडलेश्वर जैसे कोई बैठे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी एक प्रश्न है, आपने अभी गीता में कृष्ण ये कृष्ण वो कृष्ण 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 कृष्ण, क्या गीता में कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं? बहुत सारे बाकी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे बाकी विषय हैं, तो कृष्ण 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 क्या है सब? तो प्रभुपाद जी ने ऐसे कुछ बोले नहीं वो। तो मैंने कहा स्वामी जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने गीता में से कृष्ण 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 सब कृष्ण कृष्ण है और कुछ है कि नहीं गीता में? और प्रभुपाद जी तो वो प्रोग्राम का टाइम तो हो गया था, तो सब लोग उठे फिर सब चले गए। तो एक शिष्य ने पूछा आज आपने कोई जवाब नहीं दिया, वो आपके पास वाले स्वामी जी थे वो पूछ रहे थे आपसे। प्रभुपाद ने कहा वो मायावादी इतनी बार कृष्ण कृष्ण बोल रहा था, मुझे इतना आनंद आ रहा था कि ये गीता में पूछ रहा है कि कृष्ण कृष्ण क्यों इतना करना, तो मैं सोच रहा था यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि अगर आप जिंदगी में और अधिक बार कृष्ण 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 करते रहो तो तुरंत आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। और ये बात मतलब एक दूसरे से प्रभुपाद जी बहुत सिंपल थे ऐसे कोई, और प्रभुपाद जी की यह सिंपलिसिटी है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो एक बार उन्होंने कहा कि एक दो न्यूज़पेपर में कलकत्ता के एक फेवरेबल आर्टिकल था, अनुकूल लेख छप के आया था गौड़िया मठ के बारे में, और एक में तो गौड़िया मठ की निर्भत्सना की गई थी कि लोग क्या है दिन भर शोर मचाते हैं और नया तरीका लाया है कहीं से नृत्य करना ये सब करना। जो फेवरेबल आर्टिकल था छोटा सा था, जो प्रतिकूल था वो बहुत लंबा था। तो दोनों दिखा दिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर को, तो उन्होंने क्विकली ऐसे ग्लांस मारा है, बोले ये जो प्रतिकूल है ये अच्छा है। तो शिष्य ने पूछा क्यों? बोले इसमें कृष्ण नाम बहुत बार आ गया है। जो अनुकूल आर्टिकल था उसमें हरे कृष्ण वाले हरे कृष्ण जप करते हैं गौड़िया मठ है वैसा वैसा, लेकिन दूसरे इसमें ये लोग कृष्ण नाम कृष्ण करते हैं, कृष्ण कृष्ण कहां बताया कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन 3-4 दुगनी बार 3-4 टाइम्स उधर कृष्ण ज्यादा आ गया। अगर किसी डिसाइपल ने कुछ आर्टिकल लिखा है गौड़ीय पत्रिका के लिए हार्मनिस्ट के लिए, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एक ही क्राइटेरिया था, वो ऐसे देखते थे उसमें अगर सफिशियंट नंबर ऑफ टाइम्स कृष्ण है उसके अंदर बोले छप दो, कि पढ़ने वाला व्यक्ति कम से कम कृष्ण उच्चारण तो करेगा वो देखकर। तो महाप्रभु ने अपने जीवन में केवल एक ही रचना की है शिक्षाष्टक, बाकी सारा लिखाई का काम उन्होंने अपने शिष्यों से किया, षड गोस्वामियों से। शिष्याष्टक इज द ओनली थिंग विच इज एट्रीब्यूटेड टू महाप्रभु, कि ये महाप्रभु की रचना है। उसका जो पहला श्लोक है उसको भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि ये जैसे सात ज्वालाएं, हरनाम कीर्तन अगर यज्ञ है तो ये सात ज्वाला निकल रही है उसमें से। क्या ज्वाला है वो?
चेतो दर्पण मार्जनम,
चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से मार्जनम होता है। और चित्त वो है जहां पर हमारे सारी इच्छाएं आकांक्षाएं, ऑल आवर थॉट्स डिजायर्स, सब वहां पर उसका स्टोर हाउस है वो। इसलिए उसका जो दर्पण, एक सिंपल उदाहरण दिया जाता है, अगर किसी मिरर दर्पण के ऊपर बहुत गंदगी बहुत धूल बैठी हो तो हम जब दर्पण को देखेंगे या अपने आप को देखेंगे तो हमें केवल क्या दिखाई देगा? धूल। विल सी ओनली डस्ट। ये डस्ट है लस्ट एंगर ग्रीड काम क्रोध मोह मद मत्सर क्रोध, इसका मल या इसका डस्ट। क्योंकि आज हमारे हृदय पर वो मल है इसलिए हम इसको देखते हैं तो हमें मल दिखाई देता है। अगर उसको हम साफ करेंगे तो हम अपने आप को उसमें देख सकेंगे। तो इसीलिए महाप्रभु जी का पहला फॉर्मूला यह है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव, इस संसार को भव बताया गया है। कभी कभी भव अभव बताया गया है। यहां इस श्लोक में कुंती देवी कहती है अपुनर्भव दर्शनम, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डे इन डे आउट, या हम कहते हैं दिन रात। जैसे दिन भर काम किया उसका मतलब दिन के बाद रात तो आई गई, रात के बाद फिर दिन, दिन के बाद फिर रात, रात के बाद फिर दिन। वैसे भव अगर कह दिया तो अभव कहने का भी कभी आवश्यकता नहीं होती। भव मतलब जो बिकमिंग है वो अनबिकमिंग हो जाएगा, जो अनबिकमिंग है बिकमिंग हो जाएगा। इस तरह से संसार में कोई एंड नहीं है कोई। तो एक दृष्टि से कितने संकटों का हम सामना करेंगे, कितने संकटों का एनालिसिस करेंगे, कितने संकटों के बारे में प्रार्थना करेंगे, कितने संकट को लेकर कोई मन्नत मांगेंगे, कोई 9 दिन का फास्टिंग, 4 दिन का फास्टिंग, कोई डोनेशन, कोई चैरिटी। जीव को जब तक ये बुद्धि नहीं आती कि ये आज जो संकट आ गया है उसको अगर मैं जीवन का सर्वोच्च संकट मान के बैठूं तो ऐसी कोई गारंटी नहीं कि ये जाने के बाद संकट ही बंद हो जाएंगे। जैसे अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां के जो लाटाएं आती है, लहरें, वेव्स, खास करके मेरा अनुभव जगन्नाथपुरी में ज्यादा वो दिखाई देता है। जैसे मैं गोवा रामेश्वरम की भी बात कर सकता हूं लेकिन जगन्नाथपुरी में तो सबसे स्ट्रांगेस्ट वेव्स आती है वो। तो देखा हमने दूर से 70-80 फुट दूर से वो फॉर्मेशन हो रहा है, एकदम 4-4.5 फुट ऊंचा और ऐसे आके एकदम टकराता है वो बीच से। तो ये अगर जीवन का एक संकट मान के देखें हम, ये देखो आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अरे चला गया, तो कोई गारंटी है कि अभी वेव बंद हो जाएंगे? हजारों सालों से वहां पर चलते ही आ रहे, चलते ही आ रहे, चलते ही आ रहे, दिन में भी आ रहे हैं, सोते हुए भी आ रहे हैं, आप वहां जाओ तो आ रहे हैं, नहीं जाओ तो भी आ रहे हैं। तो वैसे संकट इस जगत में सबके जीवन में आ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं भव महादावाग्नि। ये बड़ा फॉरेस्ट फायर है, खास करके फॉरेस्ट फायर क्यों कहा गया है, किचन फायर या केमिकल फायर या फैक्ट्री फायर क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि किचन में अगर आग लगती है तो किसी ने कुछ किया है इसलिए ना। कभी कभी तो पुजारी आरती कर रहा है और उस समय बाजू वाले कर्टन को भी आग लगी, ऐसे भी हो गया है हरे कृष्ण टेम्पल्स में, क्योंकि नेग्लिजेंस या ओवरलुकिंग। लेकिन फॉरेस्ट फायर हमारे शास्त्र का और हमारे आचार्यों का फेवरेट है, फॉरेस्ट फायर, ये जंगल की आग है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें ऐसा है कि जंगल की आग लगाने कोई जाता नहीं, वहां पर कोई है ही नहीं, वहां पर तो आग कैसे लगाएगा। तो इसी का एक सबसे ये सीक्रेट इसी में है कि जंगल की आग मतलब कोई लगाने नहीं गया है, और इसी का मतलब ये हो गया कि इसके कारण के पीछे मत पड़ना, दैट इज द मेन पॉइंट। कुछ दिन का न्यूज आइटम है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसमें केवल उसके किनारे पे शहर है, उसका जो बीच वाला हिस्सा है जो लगभग भारत का 3/4 इतना बड़ा हिस्सा है, वो भारत की जो भारत का क्षेत्रफल जो है, टोटल स्क्वायर एरिया इंडिया की, उसका 3/4 लगभग ऑस्ट्रेलिया का अंदर का केवल डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान पूरा। और उसमें अभी धीरे धीरे लोग अपनी बस्तियां बताने जा रहे हैं, बंगलोज, रेसिडेंशियल कॉलोनीज बनते जा रहे हैं। तो कैंपर, कैंपर मतलब जो पिकनिक के लिए आते हैं लोग, अपना कुछ टेंट लेके आते हैं, वहां पर कुछ भोजन वोजन बनाते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति ने एक नेग्लिजेंस से एक स्टोव कुछ रखा या फेंक दिया या क्या किया, तो उससे एक बुश में आग लग गई, उससे एक पेड़ में आग लग गई, और वहां पर इस समय उसमें फैमिन जैसा चल रहा है, अकाल, तो एक पेड़ को आग लग गई, तो कोई घर में नहीं था, उस घर को आग लग गई, और देखते देखते एक पूरी कॉलोनी को आग लग गई चारों तरफ से, 220 लोग मर गए उसमें। ऐसा नहीं कि रात को आग लगी इसलिए बाहर नहीं निकल सके, दिन को लगी थी आग। या कैलिफोर्निया में भी फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, तो ये फॉरेस्ट फायर के आज तक किसी ने इंक्वायरी नहीं की कि ये क्यों हो गया ऐसे, क्योंकि नॉर्मल नेचुरल लॉ ऐसा है कि एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के ऊपर करके ऐसे फ्रिक्शन होता है, और उसमें से एक चिंगारी, छोटी सी एक स्पार्क निकलता है और आग लग गई। तो महाप्रभु इस भौतिक जगत को भव महादावाग्नि, और ऐसा दावाग्नि, अगर ऐसे दावाग्नि को अगर शांत करना है तो क्या फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे या किसको बुलाएंगे? संसार दावानल लिडलो का, हम रोज सुबह गाते हैं, हम प्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, इस संसार रूपी दावानल से बाहर निकलने के लिए करुणा का घन चाहिए, मेघ, मर्सी का क्लाउड, और वो है गुरु महाराज की कृपा। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। आगे महाप्रभु कहते हैं, थर्ड पॉइंट है, पहला तो है चित्त दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय कैरव, श्रेय का अर्थ है हाईएस्ट गुड, सबसे सर्वोच्च कल्याणकारी वस्तु, और ये चंद्रिका जैसा है, मून बीम्स, मून लाइट। तो हरिनाम हमारे लिए सबसे अच्छा काम करता है, हमारे जीवन में श्रेय लाता है। विद्या वधु जीवनम, कोई कहता है कि केवल हरिनाम करने से बुद्धि आती है, इंटेलिजेंस, कुछ शास्त्र समझ में आएगा हमको, महाप्रभु क्यों नहीं? ये भी एक सुंदर उपमा है, अलंकार है, विद्या अर्थात आध्यात्मिक विद्या, नॉलेज, वैदिक नॉलेज, ये विद्या रूपी वधु, वधु का अर्थ है युवती, जो अभी विवाह के योग्य है और या जिसका विवाह हो गया है, तो विद्या रूपी वधु, अगर विद्या, आध्यात्मिक विद्या, वैदिक विद्या को अगर हम एक नवपरिणित जिसका अभी विवाह हो गया है ऐसे युवती के रूप में देखें, विद्या वधु जीवनम, हरिनाम ये ऐसी विद्या रूपी वधु का वर है, उसका जीवन का मतलब उसका हस्बैंड। तो वैदिक सोसाइटी के अनुसार एक चेस्ट वाइफ, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, तो जो हरिनाम ले रहा है ही विल नेवर बी बेरेफ्ट ऑफ नॉलेज। कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि नाम लेने से ये व्यक्ति बेवकूफ हो गया या ये व्यक्ति को कुछ वैदिक नॉलेज नहीं आता. नो, निरक्षर से निरक्षर कैसा भी व्यक्ति हो, कल्चर हो अनकल्चर हो, अगर नाम ले रहा है ही इज पजेसिंग हाइएस्ट नॉलेज. श्री प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिनका नाम था पीटर, और खाली पीटर नहीं, क्रेजी पीटर, क्योंकि व्यक्ति वास्तविक मैड थे वो, और मैड मतलब क्लिनिकली मैड, ऐसे नहीं कि कभी कभी व्यक्ति कुछ किसी को मतलब ये तो पागल है, ऐसे नहीं, कभी हंसेंगे, कुछ था मन की बात थी कुछ अंदर दिमाग की. तो भी वो हमेशा मंदिर में पड़े रहते थे, और एक दिन प्रभुपाद जी कभी कभी प्रभुपाद जी का फॉर्मूला था कि एक बार मंदिर में आ गए और ऐसे होलसेल जो बैठे सबको दीक्षा दे दी. मेलबर्न में प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को दीक्षा दी जो केवल रात को ठहरने के लिए आया था. शाम को आके उसने पूछा था कि एक रात यहां ठहर सकता हूं क्या, तो उन्होंने कहा, भक्त ने कहा ठीक है, सेवा करोगे? तो हाँ. सेवा मतलब क्या, बर्तन मांजो, मॉप द फ्लोर. और रात को सो गया हो, सुबह उठ के देखा तो कुछ हो रहा है अंदर, क्या चल रहा है? दीक्षा. बोला मैं ले सकता हूं क्या? बोला क्यों नहीं. प्रभुपाद जी ने पूछा, एक व्यक्ति को पूछा, दीक्षा दे तुमको? बोला हां. हु इज कृष्णा? सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड. हु आर यू? इटर्नल सर्वेंट. बैठ जाओ. तो इसका अनुकरण नहीं करते हम, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज द पावर ऑफ अ प्योर डिवोटी. तो क्रेजी पीटर बन गए कुशक्रत दास, और वो तो कुछ काम करने वाले तो है नहीं, तो उनको बोला गया किचन में जाकर बाकी बर्तन साफ करते रहो रोज. तो लॉस एंजेलिस टेम्पल में तो 450 के ऊपर लोग रहते थे, और बड़ी फीस थी, 70s की बात है. जो दाल का बर्तन था उसके तो अंदर बैठकर उसको साफ करना पड़ता था, इतना इतना बड़े बड़े बर्तन थे सब. अचानक इनके मन में आ गया कि संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए. लोगों ने कहा, क्रेजी पीटर, और वो संस्कृत पढ़ रहा है? तो देखा कि उसने कहीं से एक बुक लाया था और चारकोल कोयले से उस सामने वाले दीवार के ऊपर वो व्याकरण के रूल्स लिखता था, और बर्तन मांजते मांजते उनको याद करते रहा वो. एक दिन उसने एक किताब का अनुवाद किया संस्कृत में से इंग्लिश, एंड देन नेवर स्टॉप्ड. 165 बुक्स उन्होंने अनुवाद किए, संस्कृत बंगाली दो लैंग्वेज सीखकर. और वो लोग कहते हैं कि बाकी उसमें कोई अंतर नहीं है, जो वैसे ही वो दिखता था वैसा ही दिखाई दिया, वो वैसे ही सिंपल था, ऐसे सिंपल रहा. तो ये कहां से आ गया इतना ज्ञान कि अपने गुरु से भी अधिक मात्रा में ग्रंथों का अध्ययन और उनका अनुवाद किया? तो उन्होंने कहा, बस हरिनाम की कृपा है और कुछ नहीं. तो विद्यावधु जीवनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम सर्वात्म सपनम. सर्व आत्मा, यहां आत्मा का मतलब होता है सोल या उसके नजदीक वाली बुद्धि, मन, इंद्रियां, एवरीथिंग. स्नपनम का अर्थ है स्नान. हरिनाम सब कुछ को धो देता है, स्वच्छ करता है. परम विजयते सर्वात्म सपनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम. और आनंद के सागर को वृद्धिंगत करता है, बढ़ाता है उसको. प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम. पद पद पर अमृत का रस देता है हरिनाम. और आगे के श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, हे भगवान, इतना सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता, क्या करूं? आपने इतना सब दिया है, ईदृशम ना अनुराग, मेरा मन ही लगता नहीं, इसमें क्या करूं? मेरा दुर्भाग्य. एक व्यक्ति थे जो इस्कॉन की झूठी रिसीट बनाकर लाइफ मेंबरशिप बनाते थे हैदराबाद में. तो कई लोगों ने कंप्लेंट किया कि हमने यहां आपके मेंबर बन गए. तो डिवोटीज ने पूछा, दिखाओ रिसीट. तो रसीद दिखाई तो बोले, ये तो जाली है, तो फेक है, किसने दिया आपको? बोले इधर से कोई आपका जैसे आदमी आया था तिलक और माला वाला सब कुछ डालकर, तो डिवोटीज ने फिर जरा जागरूक रह के उसको पकड़ लिया है और प्रभुपाद जी के पास लेके आए। प्रभुपाद ने कहा ये क्यों करता है धंधा ऐसे, भक्त बनो रहो हमारे साथ। तो उसने कहा कि नहीं मेरे पास मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है। तो जो वहां के मैनेजर, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी इसको मार के सीधे पुलिस के हाथ देना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं नहीं, बात करने पर प्रभुपाद को लगा कि शायद इस व्यक्ति में कोई होप्स है। तो इतना सब फ्रॉड करने पर भी प्रभुपाद जी ने उसको चांस दिया है। तो हैदराबाद मंदिर में फिर और प्रॉब्लम्स होने लगे उसके और मैनेजमेंट के बीच में। प्रभुपाद ने कहा ठीक है मेरे साथ मायापुर चलो। उसको लेके वो मायापुर गए। एक दिन रात को किचन में से कुछ आवाज आ गई, तो एक सिक्योरिटी वाला, तभी की मायापुर मंदिर बड़ा नहीं था, उसने देखा कि यही व्यक्ति ने एक चीनी की बोरी, शुगर का एक गनी बैग, उसको वो पत्रे की दीवार के ऊपर से ऐसे फेंक दिया और वो खुद खुद ही मारकर वो बैग लेके भागना चाहता था। तब फिर उसको प्रभुपाद, उसको डिवोटीज ने पकड़ा, प्रभुपाद के सामने लेके आए। प्रभुपाद ने कहा अभी इसको मार के पुलिस के पास भेज दो। और दूसरे दिन लेक्चर में प्रभुपाद ने बताया कि दिस इज मिसफॉर्च्यून। अगर हम कहते हैं कि इस जगत के लोग दुर्दैवी क्यों हैं, अभागे क्यों हैं, पहला फर्स्ट मिसफॉर्च्यून है इस व्यक्ति को इस्कॉन में आकर सेवा करने से लक्ष्य बनने की इच्छा नहीं हुई, वो फ्रॉड करके झूठी रिसीट बनाकर ये सब करके उसको पैसा कमाने की इच्छा हुई, दैट इज फर्स्ट मिसफॉर्च्यून। जैसे अगर हम कहेंगे कि दुनिया में पाप क्यों बढ़ता है, ऐसे नहीं कि यहां आकर लोग पाप सीखते हैं। अगर एक टेम्पररी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो पहले से ही पापी इच्छाएं हैं उनको केवल व्यक्त होता जा रहा है, और कलयुग में तो पाप तो सर्वत्र है। एक हमारे स्कूल में लड़का था, वो चिट बनाकर एग्जाम में पास होता था। तो एक दिन मैंने देखा कि ये चिट बनाना, मैंने देखा कैसे बनाते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो उसने बताया कि ये एकदम बारीकी से लिखना पड़ता है। तो मैंने जब उसको देखा पूरा प्रोसेस, मैंने कहा इसे तो पढ़ाई करना आसान है। वो मुझे बता रहा था कि किसी शर्ट के स्लीव के अंदर ऐसे फोल्ड करके यहां पे रखते हैं, फिर ऐसे ही करके वो आगे लाते हैं, फिर थोड़ा देखकर। अरे मैंने कहा ये तो इससे तो अच्छा है, इसमें तो 3 घंटे जाएंगे और 1 घंटा लगाएंगे तो अच्छी तरह पढ़ सकता है आदमी, वो विषय वस्तु समझ में आएगी, फिर तो वो सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उसने कहा नहीं, इसमें जो मजा आता है वो पढ़ाई में नहीं आता। ये मामूली तरीके हैं या मामूली एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन इससे पता चलता है मन संस्कार, मन के ऊपर कौन से संस्कार है। संस्कार का अर्थ केवल ये नहीं कि कोई यज्ञ में आहुति दी या कोई दरियो मरियो में कुछ बोल दिए, वो संस्कार नहीं होता। संस्कार का मतलब होता है ट्रैक, या जैसे पानी का बहाव, इधर से पानी आ रहा है, आप वहां पे एक अवरोध खड़ा करो और एक स्पेड या किसी और इंस्ट्रूमेंट से ऐसे जमीन के अंदर एक बड़ा नाला बना दो और ऊपर से पानी छोड़ो, वो बराबर पानी उस नाले से जाएगा। क्यों? अभी भूमि पर संस्कार हो गए। तो संस्कार का मतलब होता है कभी कभी आपका जो व्हीकल है, बॉडीज व्हीकल या माइंड का व्हीकल, वो उस ट्रैक पर बल से जाएगा। जैसे ट्रेन है, अगर लाइन्समैन ने उसको 3 बदले 4 प्लेटफॉर्म के ऊपर कर दिया, कभी कभी लोग अंदर बैठे हुए ट्रेन में बोलते हैं ना कि ये मोटरमैन बेवकूफ है, ये 4 नंबर पे क्यों लाया गाड़ी। तो मैं हमेशा सोचता था कि उसके हाथ में नहीं है कौन से प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए वो। ट्रेन कोई मोटरकार की तरह नहीं है कि यहां पार करो अरे आगे जाओ, तो आगे गए, यहां जाओ आगे जाओ, लेफ्ट गए राइट गए। मोटरमैन केवल स्पीड, आई एम राइट ऑफकोर्स ना, यहां पे अथॉरिटी है रेलवे वाले, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता हूं, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जैसे ट्रैक का अंदर से वो बदल गया, वो यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। संस्कार ऐसा है। अगर अतर इसमें मोटरमैन है और उधर दूसरा कोई अथॉरिटी है, हमारे मन का संस्कार, क्यों मेरा मन हमेशा इधर जाता है, क्यों उधर जाता है? क्योंकि पहले से मैंने उसको कुछ फर्टिलाइजर, कुछ एंकरेजमेंट, कुछ नरिशमेंट दिया है इसलिए। और अर्जुन का जो प्रश्न है, भला जीव, हे कृष्ण, कभी कभी मन कुछ करना नहीं चाहता तो भी क्यों जाता है वहां पे? तो भगवान कृष्ण का उत्तर है कामेश क्रोधेश। अगर हम देखेंगे कि मैं एक टिपिकल प्रोसेस, कोई एक वस्तु, कोई एक बिहेवियर, क्यों मैं उसके पास बार बार जाता हूं? कुछ पाने की डिजायर है, काम, और अगर काम सेटिस्फाई नहीं हो गया तो फ्रस्ट्रेशन, क्रोध। ये दो ही केवल इमोशंस हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं दोनों। हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र तीनों गुणों से परे है, शुद्ध सात्विक सात्विक भाव में है। इसलिए नाम करने से हम हमारे अपने रजोगुण से उत्पन्न जो डिजायर्स हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड के ऊपर वो ट्रैक्स बनते हैं, जिसके लिए कोई भी सिचुएशन आ गए तो हम वैसे ही बर्ताव करते हैं, और इस तरह से हमारा जो संकटमय परिस्थिति में जो जीवन है, दैट कंटिन्यूज। एक किलिया से गुजराती व्यक्ति आए थे और हमारे टेम्पल में गीता कोर्स के लिए बैठे थे, और कुछ चल रहा था कि गीता से मन चेंज हो सकता है क्या, या माइंड में कोई बर्ताव आ सकता है क्या। एक दिन उन्होंने बोला कि मुझे कुछ बोलना है। नॉर्मली पार्टिसिपेंट लोग ऐसे बोलते नहीं, लेकिन वो एकदम एक्स्ट्रोवर्ट सोशियबल टाइप व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, ये तीन दिन से मैं गीता कोर्स कर रहा हूं और मुझे समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, और कल क्या हो गया, मैं गोरेगांव में हमारे रिलेटिव रहते, उनके पास रहता हूं, हालांकि किनिया में तो उसका घर है, लेकिन यहां पर रिलेटिव से मिलने आए थे वो। तो गीता कोर्स खत्म होता है 9:30-10 बजे, फिर प्रसाद, फिर उसके बाद ग्रैंड रोड से ट्रेन पकड़ो। तो उस समय 10:30 बजे ट्रेन बहुत वैकेंट एम्प्टी होती थी, और बोरेली ट्रेन है तो गोरेगांव मालाडा तो पूरी खाली। तो गोरेगांव से उतरना था तो अंधेरी में देखा तो कुछ ज्यादा लोग है नहीं, तो वो सामने वाले बेंच के ऊपर अपने पैर ऐसे आराम से बैठा था। तो अंधेरी में एक पियक्कड़ शराबी व्यक्ति आ गए उधर, और उन्होंने इस व्यक्ति से कहा, कहे बैठाओ, क्या तुम्हारे बाप की गाड़ी है? तो ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं इतना क्रोधी व्यक्ति हूं, नॉर्मली अगर कोई मुझे ऐसे कहता था, मैं उसको कहता था कि हां है, उसी की गाड़ी है, और मैं उसको शायद ट्रेन से बाहर फेंक भी देता था। उस दिन क्या हुआ पता नहीं, जैसे उसने ऐसे कहा, मैंने एक मिनट के लिए सोचा कि इतना सब सुन रहा हूं मैं कि काम क्रोध ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और वास्तविक वो हमारा स्वभाव नहीं है, तो मैंने दोनों पैर हटा दिए, जेब में से हैंडकरचीफ निकाल दिया, सामने वाली सीट को साफ कर दिया और कहा कि बैठिए। तो वो भी उसे चकरा गया एकदम। नॉर्मली उसको भी इच्छा थी कि कुछ झगड़ा हो, कुछ दो तीन अपशब्द एक्सचेंज हो तो जरा अच्छा रहेगा। और जैसे मैं बोले, मैं गोरेगांव से उतरा, मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, मैं नॉर्मली ऐसा नहीं हूं, मैं क्यों ऐसे बिहेवियर किया, क्यों मैं शांत हो गया, क्या कारण है इसका? तो बोले एक ही बात है, चॉइस, मेरी अपनी चॉइस। मेरा पुराना नेचर था, चाहे तो मैं उसको एक और उसका अध्याय लिख सकता था, या मैंने डिसाइड किया अभी कि नहीं नहीं नहीं, ये जो लोग बता रहे हैं कि गीता में ऐसा है वैसा है, वास्तविक हमारा नेचर ऐसा नहीं है, और ये सब एक्वायर्ड हैबिट्स हैं। तो जैसे उसको थोड़ा सा एक स्कोप दिया तो वैसे काम करने लगा। तो इसलिए ये जो मिसफॉर्च्यून, अभी मिसफॉर्च्यून या फॉर्चुनेट, हमेशा चैतन्य चरितार्थ में आता है, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, लोग देखो है ना भाग्यवान, हा? तो मैं भाग्यवान नहीं हूं इसलिए मेरा जब नहीं होता, आप भाग्यवान है इसलिए आपका हो रहा है। नो, ऐसा नहीं है। ये कोई लक की बात नहीं है कि ये लकी है, बहुत प्योर डिवोटी बन गया है, लकी है ये। अगर ये लकी है और आप लकी नहीं हो तो इसका मतलब ये लक बनाया किसने? जैसे हमारे डिवोटीज कुछ प्रभुपाद जी जहां पर गए उन सब स्थानों का दर्शन करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, कोई एक स्कीम निकल रही है आजकल। वो मुझसे बता रहे थे कि मैं दो बार गया तो मेरा वीजा कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा अरे अभी तो अमेरिकन गवर्नमेंट को तो लोगों को बुलाना चाहिए, वहां तो बैंक कोलैप्स हो रही है, एयरलाइन का धंधा डाउन है, सब कुछ। बोले नहीं, क्या है ये वीजा एप्लीकेशन करने से उनको पैसा भी मिलता है हमेशा, तो उनका कोटा है दिन का, एक दिन का कोटा है कि दिन में 200 लोगों को समझो वीजा देने का, तो 200 के बाद बाकी 100 आए या 50 आए या 200 आए या 400 आए, बिना कुछ कारण दिए उनको बोलते हैं कि रिजेक्टेड, वापस आओ। वापस आना मतलब वापस वही फॉर्म भरो, वापस वही फीस भरो, तो सब आ गया। तो कभी कभी कोई सोचता है कि भक्ति भी ऐसी है क्या कि भगवान बोलते हैं कलयुग का कोटा है 2 लाख प्योर डिवोटीज बस, जिसके ऊपर जगह नहीं है और मेरा टेंशन बहुत हो जाएगा अगर इतने सब लोग आएंगे तो। तो हम कहेंगे ठीक है, हम इस्कॉन ज्वाइन कर लिए, सोलामाला कर रहे हैं, चार नियमों का पालन भी कर रहे हैं, शायद लॉटरी लगे तो बन जाएंगे प्योर, नहीं तो क्या है। ऐसा नहीं है। एक परवर्ट प्रभुपाद बोलते हैं द होल वर्ल्ड कैन हैप्पीली एंगेज फुली इन कृष्णा सर्विस। होल वर्ल्ड क्या, होल यूनिवर्स, और कोई शॉर्टेज नहीं है कृष्णा के पास हर एक के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए, क्योंकि कृष्णा इज अनलिमिटेड, कृष्णा के रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, कृष्ण के पास जो साधन है वो अनलिमिटेड है। परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं उनकी, तो कोई शॉर्टेज नहीं इसमें। तो मिसफॉर्च्यून, अनलक, दुर्भाग्य, ये सब हम स्वयं चॉइस से लेते हैं। अर्थात एक बात है, जो गुरु की कृपा होती है या भगवान की कृपा होती है उसको हम हमारा हक नहीं समझते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये उनकी अहेतुकी कृपा है। अहेतुकी का अर्थ है कि मैं नहीं जानता क्यों मुझे चुना गया उसके लिए, बस जैसे 4 सोल्जर्स हैं और 4 में से एक सीरियस है, तो जो सीरियस है उसको आईसीयू में डालेंगे, बाकी लोगों को तो बाहर बेड पे रख सकते, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा क्वालिफाइड हूं इसलिए मेरे पास नर्स डॉक्टर 24 घंटा घूम रहे हैं। अरे आपकी स्थिति बहुत खराब है इसलिए आपके यहां पे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से हमारे आचार्य ये बताते हैं, जैसे एक राम भक्त, अभी रामनवमी आ रही है तो एक स्टोरी याद आ गई, एक राम भक्त राम जी से कहते हैं कि आप महापति पावन है, राम का दरबार जो है वो महापति पावन है। राम जी स्वयं सीता देवी पास, भ्राता लक्ष्मण और उनके सेवक हनुमान जी, लेकिन कहा इसमें एक बड़ी कमी है। तो राम जी पूछते हैं इसमें क्या कमी है? बोले आप महापति पावन है तो वो महापति तो मैं हूं, तो मुझे भी इस दरबार में रखिए, नहीं तो आपका नाम कैसे साबित होगा कि आप महापति पावन है? तो ये एक भक्ति धारणा होती है कि आप मुझे क्यों चुनो, ये नहीं कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूं, क्योंकि आपका नाम पतित पावन है ना, वो पतित पावन नाम प्रूव करने के लिए, वो साबित करने के लिए आप मुझे ले लो। और ये नम्रता, ये वास्तविक भगवान को बहुत आकर्षित करती है। तो इसलिए कई बार जब ये मुद्दा आता था कि पाश्चात्य देश ज्यादा गिरे हुए हैं या अमुक एक ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, प्रभुपाद जी कहते थे कि नहीं नहीं, कलयुग एवरीबडी इज फॉलन, कोई कम फॉलन कोई थोड़ा अधिक फॉलन। एक बंगाली कहावत है कि एक जज के पास गांव के पंचायत में 2 व्यक्ति आ गए, बोले इसने एक हीरा चोरी किया है। बोला अच्छा, जवाहर की दुकान में जाकर हीरा चोरी कर रहा था। बोला ये तो बड़ी बहुत बुरी बात है। दूसरे से पूछा आपने क्या किया, बोला मैं तो केवल एक ककड़ी चुकंबर जिसको बंगाली में कीड़ा बोलते हैं, बोले मैं तो खाली एक किसी के खेत में से खाया बस और कुछ नहीं, इसके जैसा तो चोर नहीं हूं मैं। ये जो चोर है ना ये तो भयंकर चोर है, तो हीरा चोर था, मैं तो एक मामूली ककड़ी चोरी किया। बोलते नहीं हीरा चोर, हीरा चोर चोरी है वो। तो कोई एक्स्ट्रा फॉलन है कोई कम फॉलन है, लेकिन वास्तव में कलयुग में सारे पतित हैं। तो इसलिए महाप्रभु ये जो कहते हैं पहले श्लोक में शिक्षा तक के सात जो बताए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम एक दो तीन चार पांच छह सात, उसको भक्ति संत ठाकुर कहते हैं कि ये कलयुग का यज्ञ है, उसमें से निकलते हुए सात ज्वालाएं हैं, ये सात ज्वाला निकलती है। दूसरा जो श्लोक है कि एतादृशी तव कृपा भगवान ममापी दूर दैवम ईदृश्यम यहां जनी ना अनुराग, और मैं इतना अभागी हूं कि मेरा नहीं हो रहा है अनुराग इसमें। तीसरे श्लोक में वो थोड़ा बैलेंस करते हैं उसको कि इसमें से तरीका क्या है, बाहर कैसे निकले, भगवान इतने कृपालु हैं मैं इतना मिसफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट अभागी हूं। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु अमानिन मान देन, बोले ये दुर्भाग्य व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, ये इतना भी दुर्भाग्य हो उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं समझना। तृणादपि सुनिचेन, अपने आप को तृण से भी अधिक नम्र समझो, इसका मतलब अगर कोई मामूली मान अपमान करता है तो उसको ज्यादा ध्यान मत दो। तरो रिव सहिष्णु न, अगर कुछ बुरा होता है अच्छा होता है तो एक पेड़ की तरह कोशिश तो करें, कम से कम शुरुआत तो करें, कम अमानी न कभी मान की अपेक्षा ना करना, लेकिन सदैव मान देन दूसरों को मान देने में सदैव तत्पर रहना। महाप्रभु कहते हैं कि ये इतना कर दिया कीर्तनीय सदा करे, फिर नाम में रुचि लग सकती है, अर्थात वहां पे रुचि की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि कम से कम आप निरंतर नाम ले सकते हैं। कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन करने से फिर एक दिन वो रुचि निष्ठा भेदभाव प्रेम वो आगे 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 आता रहेगा। तो इसलिए थर्ड पॉइंट जो यहां पर महाप्रभु का दिया है, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृश्यम इहा जनी नारो, प्रभा जी कहते हैं यहां पर कृष्णा इज सो मैग्नानिमस दैट ही इज प्रेजेंट बिफोर अस बाय द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन ऑफ हिज नेम विच हैज ऑल द पोटेंशियल ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ एंड इफ वी रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद दैट नेम वी शैल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ कृष्णाज बेनेडिक्शन। एक लास्ट पॉइंट करेंगे फिर आज की चर्चा को यहां समाप्त करेंगे। एक भागवत में से मुद्दा प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं, व्हाट इज इरिलीजन, रिलीजन कहते हैं भगवान का मुख, धर्म भगवान का मुख है, तो अधर्म क्या है फिर? शास्त्र कहता है हमारा भागवत वो तो भगवान की पीठ है। कई अन्य धर्मों में या अन्य पंथों में वो कहते हैं कि धर्म वास्तविक भगवान से आता है और पाप बुद्धि ये मालूम नहीं कौन देता है। तो वास्तविक कई लोग कहते हैं कि जैसे जैसे क्रिश्चियन लोगों में सैटन या मुसलमान धर्म में शैतान, पारसी लोगों के भी कुछ ऐसा ही है कि एक अच्छे भगवान है और एक बुरे हैं, जो अच्छे भगवान है आपके जीवन में अच्छा करेंगे, जो उनके जैसा पावरफुल दूसरा एक बड़ा है उसको उन्होंने कुछ नाम दिया है, और वो दोनों का जब द्वंद्व होता है कोई टकराव होता है अगर वो दूसरी पार्टी जीत गई तो आपके जीवन में संकट आएगा, इतना समझ लेना। तो ये थोड़ा सा समझने में कठिन है या ये समझने में आसान है लगता है लोगों को कि संकट आ गए भगवान क्या करेंगे बेचारे हार गए होंगे शायद आज। जैसे कोई टेनिस प्लेयर्स का मैच होता है तो पहला इसने जीता 6-4 तो जो आपकी पार्टी बोले हाँ अभी तो जीतेगा, 7-5 दूसरी पार्टी जीत गई, फिर 6-2 आपका जीत गया, फिर ये जीते 8-6 अभी डिसाइडर मैच है बेस्ट ऑफ द अभी 3-2 करके वो मैच जीत जाएगा वो। तो क्या ऐसा है कि भगवान और माया अगर मेरे जीवन में संकट आ रहा है मतलब माया जीत गई, या संकट नहीं आ रहे मतलब भगवान जीत गए, ऐसा तो नहीं। भगवान और माया दोनों एक दूसरे से एक ही है। हम कहेंगे ऐसे कैसे? भगवान अगर सूरज की तरह है तो माया माया क्या है फिर? प्रभा जी कहते हैं कि जैसे सूरज एक जगह पे बैठा है और पूरा ब्रिलियंट है, वो प्रकाशमान है, और मैं अगर एक घूमते हुए चेयर, जैसे कई ऑफिस में चेयर होती है ना घूमती हुई स्विवेल चेयर, तो मैं चेयर में बैठकर अगर किसी ने मुझे ऐसे जोर से रोटेट किया तो जैसे मैं सूरज को देख रहा हूं मेरे चेहरे पे वही प्रकाश आ रहा है, और जैसे मेरा चेहरा ऐसे हो गया इधर मैं कह रहा हूं कि यहां पर मुझे कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है, क्या बात है, भगवान कहां चले गए? भगवान है कि वही है, आपने मुंह यहां पे कर दिया है। तो माया का दर्शन कब होता है? जब हम अपना मुंह यहां पे करते हैं तब। अगर हम यहां पे देखते रहेंगे तो कब माया, कभी भी माया का दर्शन नहीं होगा। देखो सिंपल है ये, लेकिन कितना प्रोफाउंड है। तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाक्य बोल रहे हैं, बिकॉज ए डिवोटी इज अ सरेंडर्ड सोल, ही नोज दैट बोथ डेंजर एंड फेस्टिवल्स आर बट डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कृष्णा। कितना ये देखो, डेंजर भी और फेस्टिवल भी, वो तो दोनों एक ही है। जैसे किसी का तिरोभाव हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो हम कहते हैं कि हम तो कल फीस देने वाले हैं। फीस? तू मर गया? बोला ना, मरना केवल एक बॉडी का एक जैसे डेमोन्स्ट्रेशन है। जो जन्म आ गया जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, जैसे भक्ति वैभव पुरी महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर के एक अग्रगण्य प्रचारकों में से, एट एज 96 लास्ट सन्यासी लगभग समझना चाहिए, उनके बारे में ऐसे बताते हैं कि लास्ट अभी कुछ साल में तो बहुत बीमार थे वो, नहीं तो 65 इयर्स वो हर वर्ष एक बार सारा भागवत का अध्ययन करते थे, ऑल 12 कैंटोस। देखो क्या साधना है, 65 वर्ष हर वर्ष पूरा भागवत का एक बार आवर्तन करना। तो उनके शिष्यों ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया था, तो लोग कहते कि कोई मरने के बाद उत्सव क्या मना दे, उनका यहां से संबंध छूट गया हमसे इसलिए हम शोक मनाते हैं, लेकिन उनको वहां पर कृष्ण की लीला में प्रवेश मिला इसलिए हमको आनंद ही है। तो डेंजर और फेस्टिवल दे आर बोथ डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ कृष्णा हु इज द एब्सोल्यूट। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की। इसके आगे ज्यादा ये पॉइंट्स नहीं है, लेकिन दो पेज हैं, इसको हम अगले बुधवार को कवर करेंगे। जरा टाइम हो गया, स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ की, ताई गौर प्रेमानंदी।